जो बरसों से
शाम ढली तो यादों के दिए जल उठे, दिल के सन्नाटे में कुछ किस्से फल उठे।
यादें माजी आजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। जो बरसों से भुलाया जा रहा है वही क्यों याद आ रहा है फरहत। आई थिंक सो इट एक्चुअली होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी रियली नेवर ह्यूमंस नेवर रियली फॉरगेट एनीथिंग। वी जस्ट ट्राई टू काइंड ऑफ यू नो कवर इट अप विद अदर थिंग्स, अपने आप को आप मसरूफ कर लेते हैं। लेकिन चाहे वो आपका पुराना घर हो या आपके पेरेंट्स जो आपके साथ अब नहीं है या कोई बिछड़ा हुआ प्यार, यू रियली नेवर फॉरगेट एनीथिंग।
बिल्कुल सारा, फिर तो सुवर मुझे माजी में लिए जा रहा है, दर्दे दिल दर्दे जिगर ताजा हुआ जा रहा है। तो कुछ ऐसी ही होती है शाम जब हम कुछ याद करते हैं और माजी में चले जाते हैं तो जो यादों के पन्ने हैं वो अपने आप ही खुलने लगते हैं।
दैट्स राइट। लेकिन पता है फरहत, बहुत से राइटर्स दे एक्चुअली आर्ग्यू दैट देयर इज नथिंग लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बिकॉज ऑल दीज फेजेस ऑफ लाइफ वेदर यू नो वी आर दे ऑलवेज लिविंग विद अस इन द प्रेजेंट मोमेंट। कई बार बैठे बैठे अगर चाय पी रही है आपको, कब जो है मम्मी के साथ चाय पीना याद आ जाए तो आप फौरन माजी में पहुंच जाती है। सो देर इज नो यू कैन से द बॉर्डर्स आर वेरी फ्लूइड बिटवीन ऑल दीज थ्री फेजेस।
बिल्कुल सारा, क्योंकि यादों को समेटना बहुत ही मुश्किल होता है और वो कभी भी कहीं भी किसी मोड़ पर आ जाती है।
दैट्स राइट। बट हम लोग परिक्रमा में माजी की नहीं अपने आज की बात करेंगे बिकॉज हम लोग लाते हैं ताजा तरीन खबरें। एंड ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस दिस इज द शो विच इज कॉल्ड परिक्रमा, तो हज़्ब-ए दस्तूर वील डू द परिक्रमा ऑफ द कंट्री। वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी वॉट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर। ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट रफली हाफ एन आवर। Why not start with the headlines first?
जी बिल्कुल सारा, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से। तो सबसे पहले पीएम की खबर सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आज वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात की।
That's right. Prime Minister Modi holds talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi. Several MOUs exchanged in the fields of digital technology, rare earth, medical products, regulations.
Tamil Nadu में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज।
Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma tenders resignation. Swearing in ceremony of the new government to take place after 11th of May.
भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया।
आईएमडी फोरकास्ट हैवी रेनफॉल ओवर असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी टुडे।
और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। तो श्रोताओं आइए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। और अब बात डेटलाइन इंडिया की।
That's right, and in our segment Dateline India, we take a look at the developments that take place at the national or global level. And today we're going to talk about Mission for Cotton Productivity.
खैर, हम सब सभी जानते हैं कि हमारा पसंदीदा कॉटन शर्ट हो या फिर कॉटन कुर्ती की यात्रा किसी शॉपिंग मॉल से शुरू नहीं होती, यहां तक कि किसी फैक्ट्री से भी नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत भारत की मिट्टी से होती है। और आज ये यात्रा कुछ इस तरह से बदल रही है जो दुनिया के भारत के कॉटन को देखने के नजरियों को पूरी तरह से बदल सकती है।
दैट्स राइट फरहत, सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कनेक्ट्स द लाइव्स ऑफ फार्मर्स, वर्कर्स, एक्सपोर्टर्स एंड ऑल ऑफ अस। The government of India has launched a 5,659 crore rupees Mission for Cotton Productivity, which is aimed at making India self-reliant in cotton and globally competitive by 2030-31. But the question is, why cotton?
जी बिल्कुल, क्योंकि कपास केवल एक फसल ही नहीं है बल्कि ये भारत की कपड़ा अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है। ये गांवों को वैश्विक बाजारों से जोड़ती है। लेकिन हमारे श्रोता शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर भारत पहले से ही कपास के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है तो फिर हमें इस तरह के किसी मिशन की जरूरत आखिर क्यों है।
Well, the reason lies in the challenges we've been facing, such as falling productivity, pest attacks, and concerns around quality. And rather than letting these issues grow, India is choosing to confront them with intent.
Saira, to zameeni star par kya badlega? Aaiye is tarah samajhte hain ki jo ekdam asli lage. Maharashtra ki ek kisan ki kalpana kijiye. Pehle keeton ke achanak hamle aur kam paidawar wale beejon ki wajah se uski aamdani anishchit rehti thi. Ab use zyada paidawar dene wale jalvayu ke hisab se mazboot aur keeton ka muqabla karne wale beej mil rahe hain.
Well, that actually means more output, better income, and less stress for the farmer. And that's not all. To make farming smarter and not harder, techniques such as high-density planting systems and better crop management, yields are set to improve noticeably. This goes far beyond the traditional way of farming.
Aur ab aaiye kheton se thoda sa aage badhte hain, ateet mein chalte hain aur kapas processing units mein gunvatta ka ek jaisa na hona aksar vaishvik maang par asar dalta hai. Aadhunik ginning factory aur behtar testing सुविधाओं के साथ भारतीय कपास अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए तैयार है.
And the real highlight for her of this story unfolds when Indian cotton earns its place as a global brand. That's the idea behind Kasturi Cotton Bharat, to create cotton that is premium, traceable and trusted internationally. That will not just be a cotton but a signature of quality.
Ji Saira, aur agar hum soche ki in sab se fayda kise hota hai to ye sirf kisi ek samuh ko nahi hota hai, hum aapko bata de, balki lagbhag 32 lakh kisanon ko seedhe taur par fayda hone ki ummeed hai aur apratyaksh roop se iska asar bahut vyapak hai. Pure gramin arthvyavasthaon ki agar baat ki jaye ya phir kapda udyogon ki ya phir niryat bazaron tak, sath hi kapas ke kachre ki recycling aur bas aur sun jaise tikau ratio ko badha हवा देने से पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा और इसीलिए ये कोई अंधाधुंध विकास नहीं है बल्कि ये असल में एक जिम्मेदार प्रगति है.
That's right, Farhad. The mission will be implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and the Ministry of Textiles, involving 10 institutes of Indian Council of Agricultural Research, 1 Institute of Council for Scientific and Industrial Research, and 10 centers of All India Coordinated Research Project on Cotton, operating in different state agricultural universities of major cotton growing states.
Aur ab is process ki baat kar lete hain, is yojana mein kya kya kiya jayega. Shuruaat mein 14 rajyon ke 140 जिलों पर ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए राज्य कृषि विभाग और ICAR की मदद से टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा और 2000 जीनिंग प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां इससे स्थापित की जाएंगी. अब यहां एक ऐसा जबरदस्त विजन है जिस पर गौर करना जरूरी है. भारत का लक्ष्य कपास की उत्पादकता को 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाना है और ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और उत्पादन के 498 लाख गांठों तक पहुंचने की उम्मीद है. ये कपास के क्षेत्र में सच्ची आत्मनिर्भरता की दिशा में एक स्पष्ट कदम है.
Well, Farhad, the mission also aligns with the 5F vision. And if you're thinking, listeners, what is the 5F vision? Well, it's farm to fiber, to factory, to fashion, to foreign. So it's not just a slogan, Farhad. It's a complete story of value creation. From the farmer's field to the global fashion runway. Next time we reach for a cotton outfit in dazzling shopping mall, do let a thought cross your mind about the journey that this outfit took, the lives that it touched, and how is India reshaping that journey today.
Bilkul sahara, kyunki ye safar yakeenan kapas se kahin aage tak jata hai aur ye hamare aatmavishwas ko darshata hai, ye hamari kshamta ko dikhata hai aur ye kaise desh ki kahani kehta hai jo vaishvik arthvyavastha mein apni taakat talash raha hai.
And maybe the most important question is that if this is what's happening in one sector, what does the future of India truly looks like?
बिल्कुल, और हम भी उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से ये एक ऐसा भविष्य जो अधिक मजबूत होगा, अधिक समझदार होगा और गर्व से आत्मनिर्भर होगा.
And to make a very important announcement for her, as part of our series People's Padma on Akashvani, in our upcoming episode, we speak to Shiva Shankari, an eminent writer. She'll be honored with the prestigious Padma Shri.
When I heard the news, the first reaction was gratitude. Gratitude to God, gratitude to my parents. I was a Sanskrit student, I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar, this my becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to village to know that language, to know the habits, the rituals. There is no writer's block. If my thoughts are ready, I'm ready to write. If the thoughts are not ready, however much you try, that quality will not be there. For me, there is no lucky pen, no lucky sari, no lucky table. I'm not superstitious at all.
और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और
उससे पहले हम बता दें कि फरहत, ये जो जितने भी पाथ पोएट्रीज हैं, व्हेन वी लिसन टू देम वी रियली गेट इंस्पायर्ड.
समय बताना बहुत ही जरूरी है, मैं भूल गई थी कि समय जो है ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमसे जुड़ सके.
सो इन ऑर्डर टू लिसन टू द फुल कॉन्वर्सेशन, प्लीज ट्यून इन टू 100.1 आकाशवाणी गोल्ड टूडे एंड लाइक यू नो एट 5:10 PM, दैट इज 10 मिनट्स आफ्टर परिक्रमा, एंड यू कैन लिसन टू इट ऑन न्यूज ऑन AR ऐप as well, also on our YouTube channel News on AR Official. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 AM.
तो चलिए, सारा ने कार्यक्रम का समय तो बता दिया है और अब रुक कर लेते हैं हमारे क्षेत्रीय संवाददाताओं का, जहां वो जानकारी देंगे उनके पास क्या है विशेष.
एंड वी आर स्टार्टिंग अप परिक्रमा जर्नी विद माय फेवरेट स्टेट फरहत. वी आर स्टार्टिंग अप जर्नी फ्रॉम गोवा. वेल, टर्निंग रूरल यूथ इनटू स्किल्ड प्रोफेशनल्स वॉज द फोकस ऑफ अ मेजर रीजनल समिट इन पणजी, विद स्टेट्स कमिंग टूगेदर टू रिफाइन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट. वी हैव अ रिपोर्ट ऑन द लेटेस्ट पुश फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट.
The two-day regional workshop concluded yesterday in Goa, focusing on the second phase of two major national initiatives, the Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana and Rural Self-Employment Training Institute. These programs, known as DDU-GKY and RACTI, are designed to bridge the gap between rural talent and the modern job market. DDU-GKY acts as a placement-linked training scheme where youth learn specific trades for corporate jobs, while RACTI focuses on creating entrepreneurs through district level training centers. Representatives from eight states, including Uttar Pradesh and Bihar, met to coordinate action plans and improve training quality. Rajya Sabha member Sadanand Tanavade emphasized that strong cooperation between government and the industry is vital for rural development. Officials also reviewed the Management Information System, or MIS, which is the digital platform used to track student progress and financial management. The gathering aimed to ensure that rural training programs align with the national goal of a developed India by 2047. फॉर परिक्रमा, निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी.
चलिए सर, अब आपको चिड़ियाघर की सैर करवाते हैं.
अच्छा, चिड़ियाघर. चलिए, किस राज्य के चिड़ियाघर
जी? हम पटना जा रहे हैं सीधा. राजधानी पटना के चिड़ियाघर में अब पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी और यहां जल्द ही आगंतुकों को ट्री टॉप वॉकवे जैसी खास पहल देखने को मिलेगी. तो क्या है ये पहल, आइए जानते हैं.
पटना चिड़ियाघर अब पर्यटकों के लिए और भी आकर्षक बनने जा रहा है. यहां जल्द ही कदमों के नीचे ही नहीं बल्कि पेड़ों की ऊंचाइयों पर भी रास्ते होंगे, जहां इंसान प्रकृति के और करीब होगा. पटना चिड़ियाघर के निदेशक हेमंत पाटिल कहते हैं कि पर्यटक यहां जल्द ही टॉय ट्रेन और ट्री टॉप वॉकवे जैसी खास पहल का आनंद उठा सकेंगे. वे बताते हैं कि वॉकवे के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया है.
देखिये, पटना जो है देश का इकलौता ऐसा जो है जहां पे 80% से ज्यादा हरियाली उपलब्ध है, तो ये तो हम लोग जैसे नीचे घूमते तो हम लोग को पता चल जाता है. बट जो हम लोग जैसे देखेंगे गेट संख्या 1 से 2 के बीच में कुसुम का एक अच्छा से लाइन लगा हुआ है, उसमें जो पेड़ के ऊपर की जो एक इकोसिस्टम रहती है वो अगर बच्चों को देखनी है तो उसके लिए ट्री टॉप वॉक जो है एक अनोखा पहल होगा. इसके ऊपर वर्तमान हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक फॉक महोदय एवं शासन निकाय के जो भी सदस्य थे, इनके ऊपर गहन चर्चा हुई और इसी के मद्देनजर ट्री टॉप वॉक का निर्माण का एक प्रस्ताव है, ताकि बच्चों को ये अलग एहसास महसूस हो कि एक ट्री के टॉप में क्या इकोसिस्टम रहती है, किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, उनको वो नजदीक से देख सके।
साल 1973 में स्थापित पटना चिड़ियाघर वर्तमान में 800 से ज्यादा पशु पक्षियों का घर है, जहां हर उड़ान और पच्चाप एक नई कविता रचते हैं। साथ ही नेचर लाइब्रेरी की खामोशी, 3D थिएटर की रोशनी और जल उद्यान की ठंडक मिलकर इस चिड़ियाघर में अनुभवों का एक खूबसूरत संसार बनाते हैं। उम्मीद है कि ये नए कदम पटना जू में सिर्फ सुविधाओं में इजाफा ही नहीं करेंगे, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच एक नया रिश्ता भी गढ़ेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
So Farhat, the tree top walkway in Patna Zoo, it really sounds intriguing. So, but let's move on to another place. And now we are heading up north to Ladakh. Well, in Leh district of Union Territory of Ladakh, vibrant cultural evening yesterday highlighted the fourth day of Sacred Relics Exposition. The cultural evenings are being organized at the main market in Leh, drawing audiences across sections of the society. Let's hear more from our correspondent.
The fourth day of the sacred exposition of the holy relics of Lord Buddha in the Union Territory of Ladakh was marked by a vibrant cultural evening showcasing a diverse range of performances from across the country along with local artistic traditions. The evening is being organized by the administration of UT Ladakh in collaboration with the Ministry of Culture, Government of India and the North Zone Cultural Center, Patiala, and is scheduled to continue till May 13, 2026. The last evening commenced with a welcome and the introductory address, followed by a presentation of Larna highlighting aspects of Ladakh's cultural heritage. The program then featured a performance by Gyamiru artists presenting their traditional Chapshkyang song and dance. Cultural troops from Orisha and Gujarat presented a series of performances reflecting the rich diversity of regional dance and music traditions. The performances were interspersed through the evening, ensuring a balanced and engaging program flow. The LACS cultural group presented the Spau dance, adding a distinct local cultural element to the evening. A Ladakhi folk song performances by local artists were among the highlights, receiving an appreciative response from the audience. The cultural evenings being held daily as part of the exposition continue to attract participation from residents, visitors, tourists and officials, reflecting the blend of spiritual significance and cultural outreach associated with the Sacred Relics Exposition. For Parikrama, this is Rigzanamo from
और सारा, अब सरकारी अस्पतालों की बात कर लेते हैं। वहां पर रक्तदान शिविर का जो है वो महत्व बताया गया है, और इसके अलावा डेंगू रोगियों के लिए निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की व्यवस्था भी की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में डेंगू रोगियों के लिए निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की शुरूआत करने वाला हरियाणा उत्तरी क्षेत्र में पहला राज्य बन गया है। कुरुक्षेत्र के लाडवा में केंद्रीय ऊर्जा और आवासन मंत्री श्री मनोहर लाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने यह जानकारी दी, और उन्होंने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, ऐसा हमारा शास्त्रों में कहा गया है। रक्तदान इसी भावना का सर्वोच्च उदाहरण है, और जब कोई व्यक्ति अपने रक्त का दान करता है तो वो न केवल एक जीवन को बचाता है बल्कि उस परिवार को भी खुशियों से भर देता है जो अपने प्रियजन को खोने के कगार पर होता है। और उन्होंने कहा है कि आज विज्ञान ने अद्भुत प्रगति कर ली है, हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं और नई नई तकनीकों का आविष्कार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रक्त की जरूरत तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो किसी दुर्घटना का शिकार व्यक्ति हो या फिर कैंसर से।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज विज्ञान ने अद्भुत प्रगति कर ली है, हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं और नई नई तकनीकों का आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन आज भी रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ ये है कि एक इंसान ही दूसरे इंसान के जीवन का सहारा बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रक्त की आवश्यकता तेजी से बढ़ी है, चाहे वह किसी दुर्घटना का शिकार व्यक्ति हो, कैंसर से जूझ रहा मरीज, सर्जरी से गुजर रहा कोई व्यक्ति हो या फिर थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसे रोगों से पीड़ित बच्चे, इन सभी के लिए रक्त जीवन का आधार है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर 2 सेकंड में किसी न किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ती है, और अस्पताल में भर्ती हर 10 में से 1 मरीज को खून की जरूरत होती है। ये एक गंभीर स्थिति है जो हम सभी से सामूहिक प्रयास की मांग करती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कुल 154 रक्त केंद्र हैं। सरकार ने पिछले वर्ष तय लक्ष्य 3,30,000 यूनिट रक्त से बढ़कर 4,50,000 यूनिट से भी अधिक रक्त एकत्रित किया है। केंद्र सरकार से हरियाणा को वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक रक्तदान हेतु रक्तदान में उत्कृष्टता के लिए लगातार दूसरे वर्ष पुरस्कार भी मिला है। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
And another very good thing happened in the field of healthcare, especially in Delhi. Well, All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, New Delhi, distributed artificial intelligence-enabled smart vision glasses to 40 visually impaired individuals, enabling them to interpret their surroundings through sound. आप देखिए AI को अगर हम लोग जो है लोग उससे कुछ लोग डर भी रहे हैं but AI is a revolution I would say and अगर उसके जो है बहुत ही सूझबूझ से अच्छी तरह उसको यूज किया जाए so it can actually provide a lot of solutions that we can't even think of. Imagine आप जो चश्मा लगा रहे हैं उसमें आपको जो है AI enabled sounds भी आ रही हैं so I think that's so you know helpful for the visually impaired. And each glass that cost around 35,000 rupees, it was provided free of cost under the CSR initiative at a function that was held at Dr. R.P. Center of Ophthalmic Sciences. Let's hear more from our correspondent.
These AI-enabled glasses convert visual information into spoken term and also identify objects, recognize faces, detect obstacles, and assist with navigation. The device helps visually impaired persons manage their daily tasks independently from identifying currency notes to locating doorways. Dr. Praveen Vasishth, in charge community of ophthalmology, said that AIIMS has planned to distribute around 1,700 such AI-enabled glasses to the persons with low visibility already identified from Delhi NCR schools. He said, such glasses will help them know about their surroundings so that they can lead a normal life. Sharing his experience with Akashvani News, a beneficiary hailed AIIMS initiative for providing the smart vision glasses, saying that they will be helpful for them in their daily life.
Smart vision glasses se jo mujhe face karni padi problem 9 to 12th mein wo mere aane wale sathiyon ko face nahi karni padegi. Kyunki smart vision glasses ke sahayata se wo board par kya likh chuke hain teacher क्या है ब्लैक बोर्ड पर क्या क्वेश्चंस है क्या टॉपिक्स है वो खुद ही देख करके समझ सकते हैं अब जैसे कॉलेज में भी बहुत सारी ऐसी किताबें होती है जो कि ऑडियो में और ब्रेल में अवेलेबल नहीं होती लेकिन हम प्रिंट बुक लेकर के अपने दोस्त की भी हम खुद स्मार्ट विजन प्रीमियम से पढ़ सकते हैं लेकिन स्मार्ट विजन ग्लासेस हमारे फोन से कनेक्टेड होता है और हम चश्मे के थ्रू ही करेंसी निकाल करके जो स्मार्ट विजन ग्लास से हम करेंसी को देख सकते हैं
अर्लियर AIIMS had distributed 53 स्मार्ट विजन ग्लासेस टू सच इंडिविजुअल्स एंड दीज स्मार्ट ग्लासेस विल हेल्प देम परफॉर्म देयर डेली रूटीन टास्क्स इजीली विदानंद कुमार भानु प्रताप सिंह आकाशवाणी न्यूज दिल्ली
और सारा आप खेलों में आईपीएल क्रिकेट की बात कर लेते हैं आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा कल दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया
In business news, benchmark domestic equity indices surged over 1% today amid hopes of de-escalation in West Asia. BSE Sensex climbed 941 points to close at 77,959. NSE Nifty rose 298 points to settle at 24,331.
और श्रोताओं हम सीधे चलते हैं आजादी के सफर पर
आज हम शहीद शक्तिदान को याद करते हैं उनका जन्म 6 मई 1824 को जोधपुर में हुआ था वो असम के जागीरदार के छोटे भाई थे उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया शक्तिदान अन्य जागीरदारों के साथ ब्रिटिश भारतीय सेना के विद्रोही सैनिकों में शामिल हो गए
विद्रोहियों ने आउवा में सितंबर 1857 में और फिर जनवरी 1858 में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी ब्रिटिश सेना ने आउवा किले पर कब्जा कर लिया और शक्तिदान को पकड़ लिया नजरबंदी के दौरान ही शक्तिदान की मृत्यु हो गई इस वीर शहीद को नमन
आज हम
और श्रोता अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को तो सारा सबसे पहले हम किसे याद कर रहे हैं
Well, we are remembering Shiv Kumar Batalwe today and we all know that he is a poet, a writer and a great romantic at heart.
जी बिल्कुल मोहब्बत जो है उनके लिए सब कुछ थी ये एक ऐसे शायर और कवि थे जो एक छोटी सी जिंदगी में इतना नाम बना गए जो आज भारत में हर नौजवान के सीनों में धड़कता है वो कहते थे गुम है गुम है गुम है एक कुड़ी जिसका नाम मोहब्बत है
That's right. He was the youngest recipient of the Sahitya Academy Award and he gave a beautiful interview. We have a snippet from it. Let's listen to it.
और मुझे नहीं पता कि मैं शायर काहे को हो गया
ठेस लगी हो आपको
काहे की ठेस
क्योंकि बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिन्होंने शायरी की है कविता लिखी है नाउम्मीद होकर दुखी होकर कभी जिंदगी में दुख पाया।
इंदिरा जी ऐसा नहीं था, ना तो मोहब्बत का फर्क रहा, हजारों औरतें जिंदगी में आई, उनको स्वीकार ही नहीं किया।
क्यों?
ऐसी क्या बात थी, मुझे कोई दुख नहीं है मोहब्बत का या किसी बात का, जितनी शायद मुझे मोहब्बत मिली है पंजाब के किसी शायर को नहीं मिली।
तो आपने किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी तस्वीर से प्यार किया है?
वो तस्वीर बनी नहीं मेरे से, कभी बालों से किसी के, किसी उंगलियों से, किसी के होंठों से, किसी के पैरों से।
तो जाहिर है कि आपने रोमांटिक कविता भी लिखी हो।
लिखी, पहले तो सारी रोमांटिक है।
एक आध हमको भी सुनाइए।
जरूर, गा के सुनाओ।
गा के सुनाइए। वाह क्या बात,
मंजूर है तो मैं किताब ले लूं?
जरूर लीजिए ना।
तो सुनिएगा, एक गीत है छोटा सा। कि पुछते हो हाल फकीरां दा, कि पुछते हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा, साडा हंज दी जूने आया दा, साडा दिल जलिया दिलगीरां दा। के कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है गुम है गुम है। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम।
आज दिन चलिया
का कहना था, सूरत उसकी परिया वर्गी, सीरत दियो मरियम लगती।
रंग वर्गा तेरे चुम्मण पिछली संग वर्गा, है किरना दे विच नशा जहां किस छीनवे सब दे गंग।
और सारा इनके गीत हिंदी में ना आकर भी बहुत लोकप्रिय हो गए।
That's right, and as I had mentioned earlier for her, that he was the youngest recipient of the Sahitya Akademi Award in the year 1967 for his magnum opus, the verse play Luna.
और अब आइए आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी फिल्म निर्देशक गोविंद मुनीस की आज पुण्यतिथि है। हम सबने सुपरहिट फिल्म नदिया के पार जरूर देखी होगी, लेकिन इस सुपरहिट फिल्म को निर्देशित किया था गोविंद मुनीस ने, और वो फिल्म आज काफी हिट भी साबित हुई है। और इसके अलावा गोविंद मुनीस की फिल्म आंसू बन गए फूल से जो है एक प्यारा सा गीत हम लेकर आए हैं आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाज में, आइए सुनते हैं।
कभी बेगाना जाने कैसा
Today, Farhad, we are also remembering Orson Welles on his birth anniversary, an American actor and filmmaker remembered for his innovative work in film, radio and theatre. He is considered among the greatest and most influential filmmakers of all time. And of course, we know that he was just 21 when he directed the high-profile stage productions for Federal Theatre Project in New York City, starting with the celebrated 1936 adaptation of Macbeth and ending with the political musical The Cradle Will Rock in the year 1937. Of course, we also remember his first film in 1941, Citizen Kane, which he co-wrote, produced, directed and starred in as the title character, Charles Foster Kane. It has been consistently ranked as one of the greatest films ever made.
You were only 25, weren't you? I mean, everybody knows that you had the most astonishing contract that Hollywood has ever provided.
Yes.
Ever, ever.
Not financially speaking, in terms of authority and rights. Financially, it wasn't extraordinary in any way at all.
It was extraordinary in the control it gave me over my own material.
And Farhad, just to tell a trivia about Orson Welles, ki unhone bahut se logon ko even in India mein kafi filmmakers ko inspire kiya. Guru Dutt khas taur se apni agar aap dekhe na unki jo lighting hoti thi natural light use karte the, that was because he was inspired by Orson Welles.
Aur ab ghadi mein baj chuke hain 4:59:41 aur waqt ho chala hai aap sabhi se anumati lene ka, to Sara aur Farhad ko ijazat dijiye.
Namaskar.